छठा अध्याय कामायनी की कथा वस्तु। देव सभ्यता के उन्मत्त विलासितापूर्ण जीवन के फलस्वरूप प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है और एक दिन सारी वसुधा प्रालय जल से अप्लावित हो जाती है। इस प्रलय के विध्वंस में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, केवल मनु और कामगोत्र श्रद्धा बचे रहते हैं। मनु और श्रद्धा बाल सहचर हैं, मनु ने स्वीकार किया है। जन्म संगिनी एक थी जो काम बाला नाम मधुर श्रद्धा था। प्रलय में मनु और श्रद्धा अलग अलग स्थानों पर बचे रहते हैं। दोनों चूंकि अकेले रहते हैं इसलिए प्रत्येक का विश्वास है कि प्राणी के रूप में केवल वही बचा है। प्रलय के अनंतर श्रद्धा की भी वही स्थिति है जो मनु की है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगदल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विस्रब्ध श्रद्धा सर्ग से। प्रलय के पश्चात मनु के श्रद्धा से मिलने तक संभावतः काफी समय बीत चुका होता है। यही कारण है कि श्रद्धा सर्ग में प्रथम भेंट में मनु श्रद्धा को अजनबी ही समझता है। पर्याप्त परिचय हो जाने के बाद वह उसे वासना सर्ग में जीवन संगिनी के रूप में पहचानता है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर शिला की शीतल छाह में बैठा मनु अनुपूटित आँखों से प्रलय के प्रवाह को देख रहा था। उसे चिंता घेरती है। वह एक ओर देव सभ्यता के अपूर्व वैभव और निर्बाध विलासिता का स्मरण करता है और दूसरी ओर प्रकृति के क्रूर विनाश लीला का चिंतन करके क्षुब्ध होता है। धीरे धीरे सोवर्तक मेघ छटते हैं, आकाश खुलता है और जल धीरे धीरे कम होने लगता है। धरती निकल आती है और उसमें स्वच्छ वनस्पतियां लहलहा उठती हैं। मन को जब अकेलापन सताने लगता है वह संयोग सुख की चाह में और अधीर हो जाता है। उसी समय उसके समक्ष विरस पतझड़ में वसंत के दूत के समान श्रद्धा उपस्थित होती है। वह निराश मन को ढांढस बधाकर उसे फिर से सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा के सानिध्य में मनु में काम का संचार होता है, किंतु देव सभ्यता के ध्वंस का स्मरण करके वह मधुर होते हुए भी काम के आमंत्रण को स्वीकार न करने का निश्चय करता है। उसी समय मन को स्वप्न होता है जिसमें काम सृष्टि के विकास में अपनी अनिवार्यता बनाता है, साथ वह देव सभ्यता के विनाश के अनंतर मानव सृष्टि में अपने परिवर्तित स्वरूप अनंग जी वास्तव में प्रेम भाव है की विशेषता और मानव जीवन में उसकी उपयोगिता की भी घोषणा करता है। उसके कथनानुसार वह और उसकी पत्नी रति इन दोनों ने देवों में अबाध विलासिता की प्रेरणा अवश्य जागृत की और उसी के फलस्वरूप देव सभ्यता का विनाश भी हुआ, किंतु अभिनव मानव सृष्टि में वह वैसी गलती नहीं करेगा क्योंकि स्थूल काम प्रेम के अनुभव में परिवर्तित हो जाएगा। श्रद्धा कामरत की पुत्री है, वह प्रेम का संदेश सुनाने के लिए आई है। काम ऐसी श्रद्धा को पाने के लिए मन को योग्य बनाने का सलाह देता है। उसके अनुसार मानव सृष्टि में प्रेम के संदेश को वहन करने वाली श्रद्धा ही मन के जीवन का वास्तविक सुख और शांति प्रदान कर सकती है। मनु काम से यह प्रश्न करना ही चाहता है कि ऐसी श्रद्धा को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि उसका स्वप्न भंग हो जाता है। मनु अनुमान नहीं कर पाता कि श्रद्धा काम की ही पुत्री है। हिमालय की उपत्यका में श्रद्धा और मनु दोनों परस्पर आकृष्ट होते हैं। नित्य परिचित होने पर भी परस्पर पूर्ण समर्पण न होने के कारण उनमें अपरिचय सा बना रहता है। मनु आम भाव से संकुचित होने के कारण अपनी भाव सत्ता का प्रसार नहीं कर पाता, इसीलिए उसे क्षोभ होता है। किंतु श्रद्धा के कोमल कमल कर स्पर्श से उसकी रूप सुषमा निहार कर वह कुछ आश्वस्त होता है। एक अज्ञात आकर्षक से मनु श्रद्धा की ओर खींचने लगता है। वह उसे एक करुण रहस्य और हृदय की सौंदर्य प्रतिमा सी देखती है। वह उसे अपने भूले हृदय की चिर खोज कहकर अपनाना चाहता है। आनंद के भार से अभिभूत श्रद्धा मनु के प्रति समर्पित होती है। श्रद्धा से उत्साहित और काम से प्रेरित होकर मन में आशा जागृत हुई देव स्वभाव के अनुकूल उनमें रजोगुण का संचार हुआ, जिससे वे सोमपान और बलि प्रधान कर्म यज्ञ करने की सोचते हैं। उसी समय प्रलय के विप्लव से बचे असुर पुरोहित आकुली और किरात, जो श्रद्धा के पालित पशु का मांस खाने के ललचाए हुए थे, मनु के पास आते हैं और उसका पुरोहित बनकर उन्हें यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रद्धा की अनुपस्थिति में यवन होता है, जिसमें श्रद्धा का पालित पशु का वध किया जाता है। श्रद्धा मनु के इस व्यवहार से खिन्न हो जाती है। एक बार मांस का भक्षण कर लेने पर मनु का रसना लौल्य बढ़ जाता है और वे दिन भर मृगया में ही लीन रहने लगते हैं। इधर श्रद्धा गर्भवती हो जाती है। मनु को अब उसमें कुछ नवीनता नहीं दिखाई पड़ती। उसकी गार्हस्थ जीवन में रुचि मन को ठीक नहीं लगती। वह अपने प्रभुत्व का असीम विचार चाहने लगता है। श्रद्धा भावी से उसके प्रति अपने सुख कल्पना मनु से व्यक्त करती है। श्रद्धा से पहले से ही खिन्न मनु उसका भावी शिष्य के प्रति स्नेह भाव को सहन नहीं कर पाता। वह इसे अपने प्रेम का अपमान समझता है। श्रद्धा का प्रेम विस्तार उसे अपने प्रति विश्वासघात सा प्रतीत होता है। वह श्रद्धा को निरीह अवस्था में छोड़कर अनिर्दिष्ट चला जाता है। पथ में अटकते भटकते मनु ईड़ा के उजड़े सारस्वत प्रदेश में सरस्वती नदी के तीर जा पहुँचता है। उसे अपनी दशा पर खेद होता है। एक क्षण के लिए वह श्रद्धा विहीन अतएव सा अनुभव करता है। उसी समय काम मनु को उसकी भूल का स्मरण दिलाता है और मनु को भावी मानव प्रजा का साप देता है। फिर मनु का ईड़ा से साक्षात्कार होता है, जो उसकी सहायक बनकर उन्हें नियमन और शासन के द्वारा अपने क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। ईड़ा का सहयोग पाकर मनु उजड़े सारस्वत प्रदेश का फिर से विकास करते हैं। प्राकृतिक शक्तियों का दोहन करके वे प्रजा को श्री समृद्धि से भर देते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती है कि वे प्रजावत्सल ईड़ा के शरीर पर भी अधिकार पाना चाहते हैं। इससे ईड़ा क्रुद्ध हो जाती है। ईड़ा की प्रजा और मनु में युद्ध होता है, जिसमें मनु घायल हो जाते हैं और मुमूर्ष अवस्था में युद्ध क्षेत्र में गिर जाते हैं। उधर श्रद्धा मनु को खोजते खोजते उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ मनु घायल अवस्था में पड़ा रहता है। उस समय उसका पुत्र मानव भी उसके साथ रहता है। श्रद्धा से अपनी गलती के लिए याचना करता है, किंतु वह रात्रि में श्रद्धा को सोती छोड़कर पुनः पलायन कर जाता है। अब श्रद्धा अपने पुत्र मानव को ईड़ा का सहयोगी बनाकर उसे सारस्वत प्रजा की संभाल करने के लिए वहीं रख छोड़ती है और स्वयं मन की तलाश के लिए पुनः चल देती है। अंततः वह एक गुफा में बैठे मन को पा ही जाती है। अशांत मन को श्रद्धा मानसरोवर की ओर ले चलती है। अनेक कठिनाइयां झेलकर दोनों मानस तट पर जा विराजते हैं, जहां उन्हें सामरस्य जनित आनंद का अनुभव होता है। कुछ दिन के उपरांत ईड़ा और मानव भी वहां पहुंचते हैं और उन्हें भी वैसा ही आनंदानुभूति होती है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।